प्रतिज्ञान मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्यों तुम हमारे प्रिय भक्त, इसलिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञानो प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञाने मैंने क्या, मेरी प्रतिज्ञा का मूल्य नहीं है, मैं किसी भक्त के अनुरोध पर अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दूंगा, जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा पर मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की, हरि से अस्त्र कहाऊं तब शांतनु पुत्र कहाऊं, मैं तो तभी शांतनु अपने बाप का बेटा हूं, यदि हरि से अस्त्र कहाऊं। हरि ने कहा कि मैं नहीं अस्त्र लेता, मैं नहीं युद्ध करूंगा। भीष्म ने कहा कि अच्छा, मैं देखता हूं कि आप अस्त्र नहीं, यदि आपसे इस महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं धारण करा लूं तो मेरा नाम भीष्म नहीं और मैं अपने बाप का बेटा नहीं। प्रतिज्ञा, अब कृष्ण जी चिंता में पड़ गए, अब इसकी प्रतिज्ञा रखूं या अपनी, अपनी प्रतिज्ञा सही रख सकते थे, खूब आसानी से रख सकते थे, अस्त्र नहीं धारण कर सकते थे, किंतु फिर भी अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को एक ही बार नहीं, लाखों बार, लाखों भक्तों से अपनी प्रतिज्ञा छोड़। इसलिए यहाँ पर करें प्रतिज्ञाने, तुम जानो मैं ही प्रतिज्ञा करता, तुम प्रतिज्ञा करो ये भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ सकते। अर्जुन ने प्रतिज्ञा, अच्छा ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जो भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखते हैं, इसलिए तुमसे कह रहा हूं मन मना भो, अपने मन को हमारे अंदर में दो। अब उस मन में जब हमको दे दिया तो उस मन का अधिकारी कौन है, प्रभु हो गए ना, अब वो मन दूसरे काम में नहीं लगे, बस प्रभु के ही चिंता में रहे। मद भक्त हो इतना नहीं होता है तो क्या करो, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चंदनम वंदनम दर्शनम सख्यात्म निवेदनम, इतना भी नहीं होता है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इतना भी प्रभु मैं नहीं कर सकता, केवल कीर्तनम हरिनाम संकीर्तनम, ये साध प्रभु, ये युद्ध स्थली में मैं इतना भी नहीं कर सकता, मैं युद्ध करूं, बाण चलाऊं और संधान करूं ना, मैं ये आपका स्मरण करूं, कीर्तन करूं और ये करूं। पहले उन्होंने कहा जैसे देखो लड़ो भी और हमारा स्मरण भी करो, कहे प्रभु ये दोनों काम एक साथ में नहीं होगा, अभी तो हमको स्मरण करना है जो शत्रु कहाँ पर है और कैसे बाण मारो, इसलिए अभी नहीं होगा। तब वो कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो मत याजो, अच्छा तो एक बात करो ये तुमसे नहीं होगा तो पहले हमारा जजन करो, जजन मैंने
पूजन
इत्यादि, तो ये फूल ले आऊँ यहाँ
चंदन
ले आऊँ और फिर आपकी पूजा करो इस युद्ध स्थली में,
ठीक
है जी,
मन नमस्कार
हमको एक बार प्रणाम कर लो बस, ये तो होगा युद्ध करने से पहले कहो जय कृष्ण आपके लिए प्रणाम है बस, कहो मत भी ऐसे से झुका करके उनको मनी में प्रणाम करो, बस इतने से ही हो जाएगा, मतलब ऐसा किसी भी संप्रदाय में किसी भी देश के किसी के धर्म के इतिहास में ऐसा कहीं लिखा गया एक बार भगवान को प्रणाम करके बस कर जाओ, कहीं भी ऐसा नहीं, इसलिए ऐसा उदार धर्म और कोई है ही नहीं। अब इस चीज को अब हम मिलाएंगे यहाँ पर, ये भक्त ने भगवान ने अपने मुख से ये कहा मन मना भव मत भक्त, मन मना भव ये सहज चीज नहीं है, हम किसी से कहेंगे ये तुम अपना मन हमको दे दो, आप लोगों ने कहा कि मैं मन आपको दे दिया, कोई दे दिया कैसे देंगे, भाई को आप हमको दे दीजिए दे देंगे, कंट्रोल में आपके है ये दिन, एक पैसा दे देंगे, 10 रुपया दे देंगे, 20 रुपया दे देंगे, ये सब सिर भी काट करके दे देंगे, मन कैसे देंगे, मन को देना बड़ा भारी कठिन, ये मन देने का एक ही मात्र उदाहरण है, कौन? ये देवियां, ब्रज की देवी मन मना। इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं ये गोपियां कैसी हैं, ये मन मना भव है।
तो वो तो उदाहरण है, हम कैसे मन को दे सकते हैं, इसका क्या उदाहरण?
वो उसी के लिए करें जो जिन्होंने मन दिया है उसका अनुसरण करो, इसलिए ये बतला रहे। इसीलिए सहज भाव हम लोग समझ नहीं पाते, जिसने मन दिया है उसका अनुसरण करो, सहज बात है, किंतु ये समझ में आती नहीं। कैसे मन दिया? बल्कि मन को मन देने से नहीं होगा, यदि कृष्ण उस मन को न ले ले स्वयं तब तक नहीं होगा। मन को ऐसा बनाओ जो कृष्ण देख करके कृष्ण को लोभ हो जाए, इसका मन हमको चाहिए, ऐसा बनाना जैसे कृष्ण को लोभ है, कृष्ण अपने आप उस मन को ले, ये कैसे होगा? ऐसे ही कृष्णमयी भावना से, कृष्ण सेवा की भावना में मन को ओतप्रोत कर दो, तब कृष्ण को लेने की जरूरत, कृष्ण उसको आकर्षण। इसलिए मन मना भाव, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात है, इस जगत में कहीं भी या विश्व में, तीनों विश्वों में इसका कुत्रापि कहीं भी कोई ऐसा आदर्श नहीं देखा जाता है जो गोपियों के समान कृष्ण को मन दे दिया है। विषम पितामह तो भक्त है ना, अपने मन दे दिया तो लड़े किस लिए वहाँ दुर्योधन के तरफ से, उन्होंने तो शरीर भी नहीं दिया। प्रहलाद महाराज जी मन को दे दिया, हाँ वो कुछ कुछ दे सके किंतु पूरा मन को नहीं दे सके। अर्जुन है, उन्होंने दिया है किंतु पूरा नहीं दिया, कुछ रह गया। जो यशोदा मैया ने मन दिया है, उनके मन के देने में कोई बाकी रह गया कि नहीं? पूरा दे दिया है ना जो यशोदा मैया, नहीं दे सकी, कुछ रख लिया नंद बाबा के लिए। आ रहा है समझ में, आया कि नहीं? ऐसे आप लोग नहीं समझेंगे, कृष्ण को पूरा नहीं दे सके, इस तरह से समझिए। सखा लोग सब दे सके, नहीं दे सके। अभी अपनी मैया बाप को, अपने घर को, अपनी गैया को अलग से समझते हैं, गोपियों का अपना कुछ अलग है? कुछ नहीं। पिता माता भाई बंधु सास ससुर पति घर शरीर कोई भी कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, संपूर्ण रूप से उनके चरणों में दे दिया। इसलिए गोपियां जैसा कोई भी आदर्श इस विषय का नहीं है। अब तुम लोग भी सोचो कि हम लोग कैसे दें, इसलिए अपने मन को ऐसा बनाओ, उनकी कथाओं की लीला के स्मरण में लगाओ और संपूर्ण रूप से अपने लिए कुछ नहीं कर करके केवल उन्हीं के लिए। धीरे 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 उनका अनुगत्य ऐसा आएगा, उनकी जैसी चिंता आएगी और उनके जैसे ही भाव आ जाएंगे तो फिर अपने मन को जाएंगे। एक दो जन्मों का काम नहीं है, एक करोड़ जन्मों का भी काम नहीं है, एक सेकंड में हो सकता है, करोड़ जन्मों में भी नहीं होगा, एक क्षण में भी हो जाएगा। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लो मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि, मैंने क्या ये सब सर्वसिद्धि ये हो सकता है, किंतु हम लोग दे लेते हैं, कुछ चुरा रखते हैं, चुरा लेते हैं, सब नहीं दे पाते, कहने के लिए दे दिया किंतु सब चोरी करते। जैसे हमने अपना सारा राज्य आपको दे दिया विश्वामित्र को, हरिश्चंद्र जी ने कहा जैसे दक्षिणा इसकी कहाँ है, और इधर खजांची साहब इधर आइए 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनको दे दीजिए, कारे झूठे, राज्य मेरा हो गया, खजाना तुम्हारा रहा, खजाना मेरा है, चाबी तेरे हाथ में है, कहाँ दिया? मन तो दे दिया गुरुजी को, कब दिया? दीक्षा के समय में, गुरुजी ये सब कुछ आपको दे दिया, तो फिर आप बिगड़ते और प्रसन्न होते हैं रमते हैं, फिर क्यों नहीं दिया, नहीं दिया, बिगड़ते हैं गुरु जी के ऊपर में ही। गुरु जी आपने ये आशा क्यों किया? ये नहीं पूछते जैसे मैंने अपने मन से नहीं पूछते जो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यही तो अपने मन से लड़ाई करो। इसलिए कहते हो कृष्ण स्वयं भगवान सर्वद्रष्टा, त्रैकालिक दृष्टा हैं वो, आदि कह रहे हैं ओ उद्धव मैंने ऐसा प्रेम अपने प्रति किसी को नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। क्यों? ये कैसे मालूम होता है कि किसी के प्रति किसी का प्रेम है? आंख से दिखता है प्रेम? आंख से ये प्रेम नहीं दिखता। कौन कैसे ये मालूम होगा? कुछ तटस्थ और स्वरूप लक्षण है जिसे कि प्रेम का पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलेगा। एक आदमी आया, उनके चेहरे में देख करके होगा जिसे आदमी को ये चाहते नहीं है, उनकी भाव भंगी दृष्टि कुछ दूसरे तरह की हो जाए, और जिसको स्नेह करते हैं तो वो क्या होगा, वो मुख से ही फूट उठेगा अपने आप। अब ये तटस्थ लक्षण हुआ, स्वरूप लक्षण नहीं है। प्रेम जब कृष्ण से करते हैं तो वो भी समझता है। हम एक कुत्ते को प्यार करते हैं ना, प्यार तो दिखता नहीं किंतु कुत्ता समझता है कि नहीं, ऐसे ऐसे केवल कर दिया तू 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 तू, और कुत्ता ऐसे पूछ दुड़ाता हुआ करते हुए बैठ जाएगा। उस कुत्ते के मुख में आप अपना हाथ भी डाल दीजिए, कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। और थोड़ा सा ऐसे तन करके यदि कुछ कीजिए एकदम हाँ हाँ कर करके उस पर हाथ मारता, ये प्रेम आंख से तो नहीं दिखता है किंतु दिखता है, तटस्थ लक्षण के द्वारा ये प्रेम का। इसी तरह से गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है अनुभव इत्यादि के द्वारा ये समझ जाएगा। जब मिलन होगा तो खूब आनंद अपने आप मुख विकसित हो जाएगा, एक आनंद की लहर आ जाएगी हृदय में। जैसे जैसे भाव की तरंगे उठती जाएंगी मन, ये मुख जो आयना के समान है इस पर भी भाव बदलते जाएंगे, भाव की लहरियां खेलेंगी उस पर, समझने वाला उसको समझेगा। और यदि विरह होगा तो इतना तीव्र विरह होगा, ताप होगा जो और किसी में। इन गोपियों का ताप देख करके उद्धव को कह रहे हैं देखो हमारे विरह में, मैं यहाँ गोकुल में हूँ मथुरा में और वो गोकुल में, इस विरह को वो सह नहीं पाएंगे। नंद बाबा के लिए नहीं कहा, किसके लिए कहा? गोपियों के लिए। वो अपने प्राण को मन को सब कुछ हमको अर्पित कर दिया है, आज हमारे विरह में इनका इतना ताप है, ऐसा ताप और किसी को नहीं। ये विरह का ताप कब होता है? जिसके प्रति जितना ही प्रेम है, ममत्व युक्त प्रेम है, उसके लिए ही ऐसा होगा विरह। जिस जो लड़का माता पिता से झगड़ा लड़ाई करता है तो यहाँ तक कि पिता के ऊपर में उसने लठिया से या और चीज से वार भी किया, पिताजी को गाली भी करता है, मान ले कि वो कहीं चला गया तो माता पिता क्या कहेंगे, वो अच्छा ही हुआ बदमाश आदमी, किंतु फिर भी हृदय में उसके लिए अनुताप, वो सुधर जाता है। इसलिए अनुताप तो होता है किंतु कोई बात नहीं। और जो पुत्र सब समय पिता की सेवा करता है वो कुछ समय के लिए भी चला जाता है उसे नहीं सहन होगा। प्रेम के ऊपर में, ममत्व के ऊपर में ये सब चीज़ें हैं, जहाँ पर जितना प्रेम है विरह में उतना ही अधिक ताप। सखाओं को भी ताप है, वृंदावन के कृष्ण के जता जितने भी सखा हैं उनको उतार, जैसे उनके सखा को ले लीजिए श्री राम जी को, कृष्ण चले जाने के बाद उनके साथ में गए, मथुरा में आए, कंस मारा गया, इसके बाद में वो अभी सब प्रतीक्षा कर रहे थे नंद बाबा के पास, कन्हैया चलेगा उसके साथ साथ, तो फिर हम लोग ब्रज में लौट गए। दो दिन हो गया अब तो लौटना चाहिए, अब ये जल्दी जल्दी लौटना चाहते हैं, और कृष्ण और बलदेव को घर वाले छोड़ देने, जब तू हमारा बेटा है, नंद बाबा का बेटा नहीं। अब समझाने में सारा परिवार लग गया, कंस की क्रिया हुई, संस्कार हुआ, सब हो जाने के बाद में अब बच्चे अब ठहर नहीं रहे, कृष्ण और बलदेव जी नंद बाबा के पास में आए, नंद बाबा रोने लगे, तुम लोगों की क्या भीतर की इच्छा, चलने की इच्छा है कि नहीं। कृष्ण को अपने दाहिने गोदी में
बोला दे तू दाहिने
और कृष्ण को बाई गोदी में बैठा दिया, बैठा कर बेटा तुम लोग दो दिन तक भेंट नहीं की, भीतर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं। तो दोनों भी फक 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 कर करके रोने लग गए, पिताजी हम तो घर वाले कहते हैं यहाँ के ये तू वसुदेव का देवकी का बेटा है, हम लोगों को देख करके बड़ा आश्चर्य, ये कहाँ से नहीं बात, और छोड़ते नहीं, कहते हैं कि तुम यही रहो यहीं रहो, आपके पास में मिलने नहीं आना देना चाहते। और सुबल सिद्धाम इत्यादि सुन रहे हैं, उनका मन कैसा हो गया, मुख कैसा हो गया,
कुमला गया
एकदम कुमला, ये तो दूसरी बात देख रहे हैं। दूसरे दिन नंद बाबा अकेले लौटे, कृष्ण नहीं लौटे, चलाकी चतुराई छल छंद बहाना बना करके वहां पर आ गए, मैं परसों आऊंगा, और नहीं आए। अब सिद्धाम और सुबल इत्यादि सखा डूब गए, मथुरा तक तो साथ में आए, कोई गोपी आई, कोई भी गोपी नहीं, मैया भी नहीं आई, कोई भी नहीं, ये लोग तो आए कृष्ण के साथ में मथुरापुरी में घूमे, और कंस को जिस रूप में मारा उसको देख करके साधु साधु साधु, और इनका हृदय फूल गया कि हमारे सखा ने कंस को पराजित कर दिया, किंतु अब ले करके नहीं जा सके, अब कैसे कैसे लौटे होंगे वो, बहुत दुखी होकर के लौटे, जैसे प्राण को मथुरा में छोड़ दिया और शरीर को लेकर के गए, किंतु वहां जाकर के अब भूल गए करीब, किंतु सिद्धाम जी नहीं भूले, बोले जब मैं अब ब्रज में नहीं जाऊंगा, घर में नहीं जाऊंगा, वो वहां पर भांडीर बन में बंशी बट के नीचे बैठ गए और रोने लगे, जब तक कृष्ण नहीं आएगा तब तक न खाऊंगा न पीऊंगा न लौटूंगा, बस वही विरह में कातर होकर के पड़े, कब तक पड़े रहे, जब तक ही नहीं लौटे, कब लौटे, उस समय में 5000 वर्ष तक नहीं लौटे, 5000 वर्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब देखा एक गौर वर्ण का कोई व्यक्ति आया, एक लड़का सन्यासी के वेश में, और उसके हाव भाव को देखा तो सोचा जैसे यही भाव को अपने शरीर को छिपा करके ये वही आया है, श्याम आया है। उस समय महाप्रभु जी भी रोने लगे, उनका कृष्ण का भाव की उद्दीपना हुई, और उससे मिले वो भी रोने लगे। तो सखाओं को भी होता है दुख, किंतु पागल नहीं बन गया, मैया यशोदा इत्यादि हैं अंधी हो गई कृष्ण के विरह में, दुखी हो गई, कुछ पगली सी भई किंतु पूरा उन्माद का नशा नहीं चढ़ा, उन्माद किसको है, इन गोपियों को उन्माद, क्यों, कृष्ण के प्रति जिसका जितना ही प्रेम अधिक है विरह का ताप भी वैसा ही अधिक होगा। नंद बाबा सखाओं को हुआ 99 डिग्री बुखार, नंद बाबा यशोदा का हुआ 101, और गोपियों को 104 से लेकर के 160 डिग्री, 160 डिग्री किसका हुआ? श्रीमती जी का। इसके बाद होने से बस अब मरना ही है, अब बाकी कुछ नहीं रहे। उस समय में उन्माद हो जाता है, शरीर का होश नहीं रहता है। ऐसे उनको, ऐसा किसी को नहीं मरना। इसलिए ये कहते हैं कि ओहो आश्चर्य की बात है, ऐसा उन्माद, ऐसा ताप, इतना दुख और किसी को नहीं हुआ जितना कि हमारी, जो कहते हैं कि हमारी ये प्रियतम है, ऐसी गोपियों को नहीं। यदि यही ममत्व कृष्ण में हम लग जाए हमारी, तो हम लोग को भी अनुभूति होगी, किंतु ऐसा ममता उदित नहीं होगी, क्योंकि सातन भजन नहीं, मन निर्मल नहीं, ऐसी ममता आती नहीं है। ममता के लिए गुरु जी ने कहा जी देखो, कहते जो गोपाल, बाल गोपाल को घर में ले जाओ। पहले कहा जी सालक राम शिला, फिर जो अच्छा गुजराज गोवर्धन के एक शिला ले जाना और इनकी पूजा कर, ये तुम्हारे। फिर देखा जैसे इससे कम होगा, अच्छा राधा कृष्ण की जोड़ी तुम रख सकती हो या रख सकते, उनकी पूजा कर, इनको ही खिलाना पिलाना, लाड़ प्यार करना, इनको सुलाना, जैसे तुम सोते हो अपने बेटे को सुलाते हो, बच्चे को सुलाते हो, ऐसे ही स्पर्श ले करो, रोज इनका दर्शन, उनको रोज खिलाओ, जो खाते हो जैसा घर में बनाते हैं उनको खिलाओ। ये सब किस लिए व्यवस्थाएं हैं, अर्चिन की व्यवस्था किस लिए? ममत्व लाने के लिए। किंतु हम लोग कहते हैं बस कैसा उनकी अर्चन करते हैं, एक पैर रखा इधर, एक पैर ठाकुर जी के घर में, और जल्दी से लेकर के ओम कृष्णाय नमो नमः, दूर से उनको चरणामजलि पुष्पांजलि दे दी, बस चले। ममता युक्त हो तब तो ये, जितनी ही ममता होगी अभी कृष्ण के प्रति उतना ही समझो जैसे ये भाव सका। इसलिए हम लोगों को साधन के लिए ये सब, ऐसा कोई साधन भजन करो जो कृष्ण में ममता आए, उनके दर्शन में ऐसी तड़फन आए। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं न प्रेम गंधोस्ति दरापि मे हरौ प्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम वंशी विलास्यानन अवलोकनम बिना विभत्म जब प्राण पतंग कानम। ओह आप लोग कहते हैं कि हमारे अंदर में कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो प्रेम कहाँ, मैं तो दिख नहीं पाता। एक मछली पानी के लिए तड़प तड़प करके अपने प्राणों को दे देती है। मछली देखा, देखा है मछली है? उसको दो दो सिंग होती है ना, कैसी होती है मछली? बंगाल वाले जानते हैं जो मछली कैसी होती है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। राधा की क्या मिलों में, और धीरे धीरे खेचते 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 जाल के अंत भाग में नीचे में लोहे रहते हैं, लोहे एकदम जमीन तक चले जाते हैं नीचे, और ऊपर तक लंबाई चौड़ाई का जाल, समुद्र जो पूरी में चार पांच हाथ छः हाथ आठ हाथ से बेसी गहरा नहीं है, वो लहरियाँ आती हैं केवल बड़ी बड़ी, एक माइल तक चले जाओ ये यहाँ से अधिक पानी नहीं है, किंतु लहर जो उठती है उसमें आदमी डूब करके मरते हैं। यदि शांत हो रहे ना, अधिक पानी गहरा नहीं है वहाँ, अधिक से अधिक चार हाथ पाँच हाथ छः हाथ, उसमें से मछलियों को खींच करके लिया, बड़ी बड़ी मछलियाँ, और जहाँ पानी से नया छट फट करते हुए प्राणों को छोड़ दिया। भगवान के प्रति मेरा कहाँ प्रेम, ये आज दिन इतने दिन हो गए अभी तक मरा नहीं, मछली दो मिनट में अपने प्राणों को छोड़ देती है पानी के लिए, और हम लोग अभी प्रभु के लिए अभी प्राण नहीं गया, महाप्रभु जी का प्रेम कहाँ? इतने रोते हैं कि इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को पाने, बाबा बहुत बड़ा भारी भक्त है। इसलिए नयन अंगल दास सुधारया बदन गद गद रुद्धया गिरा कुल करनी चितंग बबुह कदा तव नाम ग्रहणी भविष्य। नाम ग्रहण करने के समय से ये सब चीजें नहीं आती, धिकार है। इतने दिन से गुरु से दीक्षा ली हुई हो गई, हरि नाम करते हैं, और भाव की एक रेखा भी नहीं आती है, हृदय में तड़फट नहीं होती, आंसू नहीं आते, हृदय द्रवित नहीं होता है, पुलकित रोमांचित नहीं। तो क्या हुआ, हरिनाम लिया, कितने दिन हरिनाम, हम जब दिखा लिए हुए तो 50 वर्ष हो गया।
बाबा
कहाँ रहते हैं, वृंदावन में रहते। देखा जैसे कोई बात होगी, चिमटा उठाया शिष्य को या दूसरों को मारना आरम्भ कर, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लगा, कहाँ ये सब लक्षण। इसलिए ममस्व पर ही निर्भर करता है, गोपियों का कृष्ण के प्रति ममता है, तो वैसी के लिए कहते हैं। ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है न सुना जाता है, गोपियों को श्रीमद्भागवत से निकाल दो, या हमारे वाङ्मय में से, भारतीय वाङ्मय में से वेद वेदांत उपनिषद पुराण स्मृति न्याय और सब चीज़ों से निकाल दो श्रीमद्भागवत, और श्रीमद्भागवत से गोपियों के चरित्र को बाहर कर दो, क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। उस सत्य का कोई मूल्य नहीं, सत्यम वद अहिंसा अहिंसा परमो
धर्म,
ये सब बेकार का हो जाएगा यदि उसमें से प्रेम को निकालो। इसलिए कहते कहीं नहीं देखा जाए, वेदों में कहीं गोपियों का चरित्र या ऐसे किसी भक्त का चरित्र का वर्णन है जो ऐसा प्रेम, वेद में ईशोपनिषद में ऐसा लिखा गया है कि एक बूढ़ा बाप था,
कठोपनिषद
में बूढ़ा बाप बहुत यज्ञ करता था वो ऋषि, और जितनी सूखी दुबली पतली पतली गोबर करने वाली गायों को खरीद ले आता, हजारों हजारों गायों को, अब दूध नहीं देती हैं, टट्टी कैसी गायों की, गोबर कैसा होता है, ऐसी गायों को खरीद ले आता है और खरीद करके उनको दान करता, ब्राह्मणों को दे, ले जाओ। ब्राह्मण तो चाराने के भी, चाराने के गोदान होता है, आठाने का होता है, 1.25 रुपये का होता है, 1.25 रुपये का होता है, 1.5 हज़ार का, 4 हज़ार का, 10 हज़ार का, 20 हज़ार का भी होता है। चाराने की बच्ची आपको घाट पर मिल जाएगी, जिसको दान करना है दान कर। हम लोग बक्सर में देखा, रामरेखा घाट पर ग्रहण के समय में या वो संक्रांति के मेले में, सब दुबली पतली छोटी सी बच्चियाँ लेकर के खड़े रहते हैं, 1.25 रुपये की ये बच्चिया दान है, और ये 1.25 रुपये का, ये 150, ये 200, ये 500 का, ऐसा एक तरह से बिजनेस है। किस विषय पर मैं कह रहा
हूँ,
वैसे गायों का दान करते थे। बेटा जरा बुद्धिमान था और सरल था, कहे पिताजी ये नहीं कहा कि आप गायों को ऐसे अच्छी अच्छी गायों को दान कीजिए। पिताजी को कुछ बात भी कड़ी ना लगे और वो समझ भी जाए, इसलिए चलाकी से बोला, पिताजी इन गायों का इतना दान करते हैं, हमको किसको दान देंगे। इसलिए कहा, उनका मेरे ऊपर में ममत्व है, ममत्व की चीज़ें नहीं दी जाती। बेटे का दान कभी कोई करता है, तो वो कहते हैं जैसे अरे गाय देना है तो अच्छी अच्छी गायों को, जिनके स्थान हो, जिनका एक सुंदर सा बछड़ा या बछड़ी खुदक रही हो, 5-10 किलो गाय दूध देती और बड़ी पुष्ट हैं, सिंग सुंदर है, उसमें सोने की सिंग लगा दो, और खुरों को कैसे करो,
चांदी से
मढ़ो, और सिल्कन कापड़
सोने के झालर
सुनहरी झालरों के साथ में देकर के ब्राह्मणों को दान दो, यदि दान देना है तो ऐसा दो। तो वो सुनेगा नहीं पिता, इसलिए कहा जैसे किसको दान देंगे मुझे, एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, 4 दिन कहा, सुन ही नहीं रहा। तो फिर उन्होंने एक एक दिन में 2-2 बार 4-4 बार कहा, तो वो बिगड़ गया, तुमको जम को देंगे जाओ। तो बड़ा खुश हो गया बेटा। तो अब दूसरे दिन उनको प्रणाम करने, पिताजी मैं जा रहा हूँ जम के पास में, आपको प्रणाम करने के लिए, अरे मैंने सचमुच में तुमको जम को दिया, मैंने तो बिगड़ करके दिया, तो नहीं आपने जब बात कही थी अब आपकी बात पूरी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे बहुत समझाया तो माना नहीं, जम के पास में चला गया। वैसा जीदी और वैसा लड़का भी सचमुच में वो पहुंच गया जम के पास।
जम के पास कैसे गए?
कोई होगी व्यवस्था? यदि हमारे उस ऋषि के अभिसंपाद दिया तो कैसे मर गया वो? परीक्षित महाराज जी को सांप कैसे आ गया? वाणी में कुछ है ना, ब्रह्मचर्य का बल है। ऐसे वो लड़का भी तो साधारण ही है, वो जो पिताजी से ऐसा कह रहा है, ब्रह्म विद्या होगी, अपने ब्रह्म विद्या से चला गया, किंतु अधूरी है, अभी स्वर्ग तक जा सकती है, अभी आगे नहीं पहुंच सकती, इसलिए वहाँ पर अपने तेज से अपने उस भाव से वहाँ पर पहुँच गया। मान लिया कि नहीं गया, चिंता करेगा तो वो आ जाएगी कि नहीं? खैर इतनी नहीं, उस समय उपनिषद में ऐसा ही है कि वो गए, और जम वहाँ पर उस समय घर में नहीं थे, 3 रात वो बाहर थे, जमी थी उनकी स्त्री थी जिनसे जमुना जी
पैदा हुए
वो थी
जमुना तो उनका भाई है, जमुना जी भाई बहन,
वो वहाँ पर थे नहीं, उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा, उसका आवभगत करके उसको अतिथि के रूप में रखा, कहा जी आप कैसे आए? तो मैं उनसे मिलने आया, कोई खास जरूरत और दूसरे से नहीं, तो 3 दिन नहीं आए, तो ये 3 दिन उपवास रहा, मैं न खाऊंगा न पीऊंगा, जिस काम से आया हूँ वो काम होना चाहिए। 3रे दिन जमाए आकर के सबसे पहला उनका काम हुआ जी उस बच्चे को बुलाओ। बच्चे को बुलाया और पूछा जी मैं तुम हमारे यहाँ अतिथि आए हो, इसलिए मैं तुमका आदर अभ्यर्थना करता हूँ, और मेरे लिए जो गलती हो गई 3 दिन तुमसे नहीं आया मिला और तुम 3 दिन पुकारा, इसके लिए तुम 3 बार मांगो। तो उन्होंने 3 बार मांगी, उसमें से 1 बार मांगा, 1 बार में तो मांगा जब पिताजी की बुद्धि शुद्ध हो जाए, ऐसा जो करते हैं बूढ़ी गायों को देते हैं उनकी बुद्धि पलट जाए और अच्छी चीजें दें जैसे उनका कार्य हो, और दूसरे में कुछ और मांगा।
हम ये पिताजी गुस्सा हो जाता है, गुस्सा भी उनका उतर जाएंगे, भूल जाए जैसे विशेष व्यवहार,
और वो हमारे प्रति जो व्यवहार उन्होंने किया है उसको वो भूल जाए। और 3रे में मांगा आप मुझको आत्म तत्व विद्या दीजिए, मैं कौन हूँ, इस शरीर में मन एक है, मन के भीतर में एक आत्मा छिपी हुई है जो ये कहती है ये सुख है ये दुख है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति जिसमें है, उस आत्म तत्व को उपदेश हमको कीजिए। वो कहते हैं जैसे एक बात करो, तुमको संसार में जो सबसे अच्छी से अच्छी चीज हो, मूल्यवान से मूल्यवान चीज है, वो तुम मांग लो। पत्नी चाहिए, राज्य चाहिए, पृथ्वी का राज्य चाहिए, स्वर्ग का राज्य चाहिए, ये सब चुन ले, नहीं नहीं हमको इसकी जरूरत, मोक्ष ले लो और कोई चीज की जरूरत नहीं है, हमको भाई आत्मविद्या दी। आत्मा क्या है? अब आत्मा भी 2 प्रकार का, एक आत्मा और एक परमात्मा। हम लोगों के एक एक के शरीर में जो है वो है व्यक्तिगत, और सबके जो साक्षी के रूप में जो परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, वो है परमात्मा। उस परमात्मा के जानने से अपना भी जानना हो जाता है, जैसे सूर्य के उठने से ये वस्तु वो वस्तु सूर्य मैं सबका ज्ञान हो जाता है, ऐसे वो तत्व को बहुत तरह से उन्होंने किया, जबकि नहीं माने तब उन्होंने आत्मा तत्व का उपदेश कैसे उपदेश किया? हमारे द्वादश महाजन हैं 12, उन महाजनों में ये जम भी एक भगवत तत्व को जानने वाले हैं। कैसे किस प्रमाण से आप कहते हैं? अरे तो भागवत में ही प्रमाण है। जम दूत लोग गए और उनसे कहा जैसे प्रभु आपके अतिरिक्त और कोई जगत का कर्ता धरता है। कहां हमारे एक और हैं, वही जगत के प्रभु आराध्य हैं। वो कौन है? वो प्रभु विश्व ब्रह्मांड के सबसे। तब उन्होंने आत्म तत्व को उनको प्रदान, तब वो जगत को फिर लौटे। पिताजी बड़े प्रसन्न, उनकी बुद्धि भी ठीक हो गई और सब काम। अच्छा, इसमें ये तो बताया आत्म तत्व, ये आत्मा क्या है? नित्य है, अजर है, अमर है, नहीं? और आनंदमय है। ये सब तो है, इसी को जानने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। किंतु भगवत प्रेम के संबंध में कुछ कहा? प्रहलाद महाराज जी इतने उच्च कोटि के हैं, भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। भगवान ने कहा जे वर मांग लो, उन्होंने कहा जे वर नहीं मांगेंगे, मैं बनिया नहीं। बनियागिरी भी जिनमें नहीं है, भगवान के प्रति विशुद्ध भाव उनका। सर्वत्र वो देखते हैं क्या, जैसे ये जगत में जितनी चीजें हैं ये ब्रह्म है, भगवान अपने अंदर में देखते हैं और भगवान में सब जीवों को देखते हैं। तभी प्रेम की बातें कुछ हुई, कोई प्रेम की बात। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी, पांडव लोग, उद्धव जी, और ये उद्धव जी जाते हैं ब्रज में, उन गोपियों की चरण धूली देते हैं। उन्हीं गोपियों के संबंध में कृष्ण उनको समझा रहे हैं परब्रह्म, इनके अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो गोपी प्रेम को समझा हो। कोई भी समझने वाले हैं नहीं, सबसे अधिक कृष्ण ही समझते हैं जो गोपियों को हमारे प्रति। ऐसी घोरी भारी, यदि नारद जी चले आए ना, नारद जी के चरणों में गिर पड़ेंगे और नारद जी क्या करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, किंतु कहेंगे जी मैं गोपियों की चरण धूली बन जाऊं। कृष्ण स्वयं उनके पीछे पीछे चलते हैं। किस लिए? गोपियां चलेंगी पीछे से, उनकी धूल उड़ेगी चरणों से लगी हुई, और मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये स्वयं ऐसा करते हैं। इन्हें गोपियों की महिमा जितनी कृष्ण जानते हैं और कोई नहीं जानता। हाँ, गोपियां जानती हैं, ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद, ये सब लोग जानते हैं इनको, और लोग अधिक नहीं जानते। इसलिए कृष्ण स्वयं उनको समझा रहे हैं, उद्धव जी जैसे लोगों को, ये गोपियों का प्रेम कैसा है, आप जाओ देखेगा तुम ये कैसे ये गोपियां हैं। इस संसार में जितने भी प्रिय वस्तु हैं उनमें सबसे पहला कौन है प्रिय? पति प्रिय होता है, पति के बाद में तब पुत्र होता है, इसलिए स्त्रियों के लिए। अभी मान लिया कि हम भारतवर्ष में हैं और बहुत से राष्ट्र हैं, यदि हम पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो तो हम किसका पक्ष लेंगे? भारत में उत्तर प्रदेश से और मद्रास से लग गया लड़ाई, तो हम किसका पक्ष लेंगे? उत्तर प्रदेश में भी हमको लग गया झगड़ा कहीं बाहर से, भरतपुर से और वृंदावन से, किसका पक्ष लेंगे? अब वृंदावन में अपने परिवार से दूसरे परिवार से लड़ाई लगी, किसका पक्ष लेंगे? अपने परिवार, अपने परिवार में चाचा जी से और हमारे पिताजी का की लड़ाई हुई, किसका पक्ष लेंगे? चाचा जी, अपने पिताजी। अच्छा, फिर यदि बाप में और बेटे में, बाप में और उसके लड़के में और उसके पति में, दोनों में लड़ाई हो गई, पत्नी है और उसका बेटा है और उसके पति हैं, तो बेटे में और बाप में दोनों में लड़ाई हो गई, अब स्त्री किसका पक्ष लेगी? पति का पक्ष। अच्छा, ऐसा ही मैंने स्वभाव है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति है। यदि पुत्र का कोई ले किंतु वो उचित नहीं उतना कहा जाएगा, पति उसका सर्वस्व है, पुत्र के साथ में उसका कोई कंडीशन में कुछ नहीं है, किंतु पति के साथ में उसका कंडीशन विवाह के समय ही लगा दिया गया, हम एक दूसरों को नहीं छोड़ें, इसलिए उचित ऐसा ही। अब पति में और अपने में झगड़ा लग गया किसी बात पर, अनबन हो गए, तो किसका पक्ष लेगी? अपने अपने शरीर में ये हाथ में गैंगरिंग रोग हो गया। गैंगरिंग रोग मैंने क्या,
अंदर से सड़ने
लगा। डॉक्टर ने कहा भाई ये आपको बात देना है, नहीं तो आप मरेंगे। क्या करेगा? अपने बचने के लिए प्राण पर कोई संकट आई, ऐसी कोई लज्जा आई जिसमें अपने प्राणों को नहीं रखना है, प्राण पर जब आया तो अपने शरीर को भी हम छोड़ दें। इसलिए शरीर से भी अधिक प्रिय क्या हुआ? प्राण। ये बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी जी धीरे धीरे। अच्छा, प्राण भी अपने छोड़ देते हैं धर्म के लिए। कैसे? अभी सुनो, अभी भारतवर्ष के लिए भगत सिंह ने क्या किया? हंसते हंसते अपने प्राणों को
बलिदान
दे करके और सूली पर। ये तो इसके लिए, धर्म के लिए। हमारे अर्जुन सिंह के पुत्र, उनको औरंगजेब ने दीवारों में चुनवा दिया, कलमा पढ़ो, हिंदू धर्म छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जीवित नहीं बता दे, मारेंगे नहीं। क्या करेंगे?
दीवार को चुनवाया, धीरे धीरे
चुनवा, बस यहाँ तक चुनवाया, अब यहाँ तक चुनवाया, अब बोलो यहाँ तक चुनवाया, अब बोलो, थोड़ा सा नाक से अभी ले रहे हैं, अभी कलमा पढ़ो। काजी मरते दम तक नहीं, अंत में इतना चुनवा दिया और इसके बाद में देखते देखते किंतु धर्म नहीं गया। कैसा धर्म के लिए प्राण छोड़ दिया। इस करते उससे प्राण छोड़ देते हैं। इस प्राण से भी प्रिय, प्राण क्या चीज है? प्राण एक वायु है, आत्मा नहीं है। आत्मा मरती नहीं, ये शरीर में रहने के लिए वायु की जरूरत है, धौंकनी के समान। उस प्राण को छोड़ना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आत्मा को नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये प्राण को से भी अधिक मोक्ष है। मोक्ष माने क्या? अत्यंतिक दुख निवृत्ति, अब जन्म मरण से अतीत हो जाना। और उसे भी प्रिय क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति, इससे बढ़कर क्या और कोई चीज? ये प्रेम लक्षण माने कृष्ण की सेवा, जिसमें कृष्ण प्रसन्न हो, ये कृष्ण की प्रसन्नता जीवों के लिए, इसे बढ़कर के और कुछ नहीं है। ये गोपियों में है परिपूर्ण रूप में, और कहीं नहीं। ये सब विषय प्रिय वस्तु में मैं ही उनका सबसे सब कुछ हूँ। जितनी प्रिय वस्तुएं हैं वो सबको आप सार ले लो। कृष्ण कहते हैं मैं ही उनका सब कुछ हूँ। ये मोक्ष से भी, प्रेम से भी जो कुछ है सब मैं हूँ। ये दूर में है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए तड़प रहे हैं। इस तरह से गोपियों की प्रशंसा कर प्रेम हो तो ऐसा। आज यहीं तक रहें, कल इसके बाद ही।